लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, सामाजिक प्राणी के रूप में मानव को एक समाज में रहने हेतु किसी भी समाज के द्वारा निर्धारित कायदे कानूनों और धार्मिक रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन संचालित करना पड़ता है। समाज के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे नियम और धार्मिक रीति रिवाज इस भांति हमें अपने समाज का एक अभिन्न अंग होने में मदद करते हैं। इस भांति यह न केवल हमें वरन पूरे समुदाय को एकता और एकजुटता में बने रहने हेतु मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में अमन चैन और खुशी का अनुभव करते हैं। ख्रिस्तियों के लिए बपतिस्मा संस्कार कलिसियाई रीति के अनुसार सात संस्कारों की कड़ी में वह प्रथम संस्कार है, जहां कोई भी नवजात शिशु बपतिस्मा लेने के द्वारा कलिसिया और ख्रिस्तीय समुदाय का एक अंग बनता है। हमारे विश्वास के अनुसार बपतिस्मा संस्कार हमें आदि पाप से मुक्त कर पवित्र आत्मा के वरदानों से पोषित करता, जहां हम ईश्वर की संतान और कलिसिया के पूर्ण सदस्य बनते हैं। हम ईश्वर में एक नए जीवन को प्राप्त करते और ख्रिस्तीय समुदाय में अपने विश्वासी जीवन की शुरुआत करते हैं। श्रोताओ, आज माता कलिसिया प्रभु के बपतिस्मा का त्योहार मनाती है। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए कलिसिया में अपने बपतिस्मा की याद करें और अपने लिए ईश्वर से कृपा की याचना करें कि हम बपतिस्मा के वरदानों को जीने के योग्य बन सकें।
वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरेत से आए, उन्होंने यर्दन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें सही अर्थ में ईश्वर की प्रिय संतान बनने में मदद करें। विशेष रूप से हम अपने में ईश्वर के द्वारा प्रेम किए जाने के अर्थ को समझ सकें। ईश्वर के उस अतुल्य प्रेम को अपने परिवार में, अपने माता पिता, भाई बहनों में, कलिसिया के समुदाय में और इष्ट कुटुम्ब में अनुभव कर सकें।
यीशु तू है महान, सारे जगत में महान, तू मेरा बल मेरा प्राण, तू मेरे जीवन की शान।
श्रोताओ, नबी इसाइयास के ग्रंथ अध्याय 55 से लिया गया आज का पहला पाठ प्यासों को पानी के पास आने का निमंत्रण देता है। नबी इसाइयास कहते हैं, कि यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अनाज खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। श्रोताओ, भौतिकतावाद की दुनिया में नबी के ये वचन हमें सुनने में थोड़े अटपटे लगते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में लक्ष्मी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर भी यदि हम विश्वास की निगाहों से देखें तो जीवनदाता ईश्वर में ये सारी बातें हमारे लिए संभव हैं। वास्तव में नबी हमें ईश्वर से मिले उन मुफ्त वरदानों की बात कहते हैं जिनके लिए हम अपने में योग्य नहीं हैं। हमारी अयोग्यता के बावजूद ईश्वर हमें अपनी कृपाओं से भर देते हैं, जिसकी चर्चा नबी पुनः हमारे लिए आकाश से धरती पर बरसता पानी स्वरूप करते हैं। आकाश का पानी धरती पर गिरकर धरती को नम्र और उपजाऊ बनाता है, उसी भांति ईश्वर की कृपाएं हमारे लिए वर्षा के पानी स्वरूप होते हैं। यदि हम ईश्वर की कृपाओं और अपने जीवन में मिले उनके वरदानों को देखें, उन्हें स्वीकारें और कृतज्ञता पूर्ण हृदय से उन्हें ग्रहण करें, तो हमारा सारा जीवन एक उपजाऊ भूमि बन जाता है। श्रोताओ, ईश्वर ने हर मानव को अपने अमूल्य वरदानों से विभूषित किया है। सर्वप्रथम हमारा जीवन, जिसे हमने इस धरती पर पाया है, हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को करने के लिए नहीं वरन जीवन देने वाले ईश्वर के कार्यों को पूरा करने हेतु भेजे गए हैं। हमें यह जीवन मुफ्त में मिला है, जिसे हम दूसरों को बांटने हेतु बुलाए जाते हैं। तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ, यह बुलावा हमें ईश्वर की ओर से दिया जाता है, जिससे हम उन्हें जाने, उनमें विश्वास करें और उनकी इच्छा और योजना को जानते तथा समझते हुए उन्हें पूरा करें। श्रोताओ, यह हमारे अंदर से आने वाली एक पुकार अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की मांग करती है। प्रेरित चरित से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें उसी आत्मा के बारे में कहता है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। धर्म के अनुरूप हमारा आचरण तब उचित होता है जब हम आत्मा की आवाज से प्रेरित होकर अच्छे कार्यों को पूरा करते, जिसके द्वारा दूसरे लोगों की भलाई होती है। यीशु ख्रिस्त उसी आत्मा की प्रेरणा से अपने जीवन में अपने कार्यों को नहीं वरन अपने पिता के कार्यों को पूरा करते हैं। उन्होंने शांति का सुसमाचार सुनाया। अपने बपतिस्मा के उपरांत पवित्र आत्मा से पूर्ण उन्होंने पूरी यहूदिया में घूम घूम कर भलाई के कार्य किए और शैतान के वश में आए लोगों को चंगा किया। श्रोताओ, पिता के पुत्र यीशु ख्रिस्त को यर्दन में बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं शुद्ध और पवित्र थे, क्योंकि योहान का बपतिस्मा पश्चाताप और पाप मुक्ति का बपतिस्मा था। लेकिन यीशु ख्रिस्त पापियों के संग अपने को क्रमबंध करते और संहिता के नियमों को पूरा करते हैं। वे संहिता के नियमों का उल्लंघन नहीं अपितु संहिताओं को पूरा करते हैं। वे अपनी नम्रता में बने रहते हुए पिता के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को प्रदर्शित करते और अपने को सारे मानव समाज के संग एकजुट करते हैं। वे निष्पाप रहते हुए भी पापी मानव समाज में अपने को सम्मिलित करते और मानव परिवार का एक अंग बनते हैं। अपनी इसी आज्ञाकारिता के कारण वे स्वर्गीय पिता के परम प्रिय पुत्र बनते हैं, जिसे पिता यह घोषित करते हुए कहते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्रोताओ, ईश्वर पिता हम सबों पर भी अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं जब हम उनकी आज्ञाओं के अनुरूप जीवन जीते और उनके कार्यों को अपने जीवन में पूरा करते हैं। इस दुनिया में माता पिता अपनी उन्हीं संतानों को अधिक प्रेम करते जो उनकी आज्ञाओं के अनुरूप जीवन यापन करते और अपने कार्यों को अच्छी तरह पूरा करते हैं। अपने बपतिस्मा में हम सभी स्वर्गीय पिता के प्रेम में आत्मा से पोषित किए गए हैं, जो हमें प्रेरित करता, जिसके फलस्वरूप हम उन्हें अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपनी तरह निष्ठावान पुत्र बने रहने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने बपतिस्मा के वरदानों को अपने दैनिक जीवन के कार्यों में जी सकें, जिसके द्वारा पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर की महिमा होती है।
यीशु तू है महान, सारे जगत में महान, तू मेरा बल मेरा प्राण, तू मेरे जीवन की शान। यीशु तू है महान, सागर में जब भी आते हैं तूफान आंधी, पापों के जंजाल में नैया मेरी डगमगाती, तू ही है मालिक, तू ही है नाविक, तू ही है मालिक, तू ही है नाविक, तू मेरे जीवन का साथी, यीशु तू है महान, सारे जगत में महान, तू मेरा बल मेरा प्राण, तू मेरे जीवन की शान। यीशु तू है महान, सारे जगत।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ख्रिस्त जयंती का महापर्व मनाते हुए हमने ईश्वर के महान प्रेम को देखा। क्रिसमस का यह काल यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा महापर्व के साथ समाप्त हो जाएगा और हम एक सामान्य काल में प्रवेश करेंगे। संत पापा ने बतलाया कि हम इस सामान्य काल में अपने परिवारों में किस तरह प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट प्रसिद्ध कर कहा, क्रिसमस बीत रहा है किंतु हमें पारिवारिक जीवन की ओर लौटना है। काम करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, हमने जो सुना और देखा उन सब कुछ के लिए हमें ईश्वर की महिमा एवं स्तुति करते हुए लौटना है। हमें दुनिया में सुसमाचार लाना है कि यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं। क्रिसमस काल प्रभु यीशु के बपतिस्मा महापर्व के साथ 10 जनवरी को समाप्त होगा। कार्डिनल हेनरी स्कावेरी के निधन पर संत पापा फ्रांसिस ने गहन शोक व्यक्त किया है तथा कहा है कि सियोन के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष स्विट्जरलैंड में अपने धर्म प्रांत के विश्वासियों के लिए एक बड़े समर्पित चरवाहे थे। स्विट्जरलैंड में सियोन के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष कार्डिनल हेनरी का निधन बृहस्पतिवार को 88 साल की उम्र में अपने शहर सेंट लियोनार्ड में हुआ। संत पापा ने शुक्रवार को कार्डिनल हेनरी के उत्तराधिकारी धर्माध्यक्ष जो मेरी लोवे को एक तार संदेश भेजकर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। संदेश में संत पापा ने कार्डिनल हेनरी के परिवार के सदस्यों एवं धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने संदेश में लिखा है, मैं करुणावान पिता से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी शांति एवं प्रकाश में इस ज्ञानी व्यक्ति एवं चरवाहे का स्वागत करें जो अपने धर्म प्रांत का नेतृत्व करने में पूर्ण रूप से समर्पित थे। संत पापा ने विश्वासों की आवश्यकताओं के प्रति कार्डिनल स्कावेरी के समर्पण, पुरोहित्य बुलाहट हेतु उनके प्रोत्साहन और कलीसिया की एकता में उनके प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने उन सभी लोगों को अपना प्रेरित का आशीर्वाद दिया है जो कार्डिनल हेनरी स्कावेरी के निधन पर शोकित हैं। कार्डिनल बल्थाजार पोरास का दोजो को लिखे पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया है जो महामारी और गरीबी के कारण पीड़ित हैं। संत पापा फ्रांसिस ने मेरिदा के महाधर्माध्यक्ष एवं काराकास के प्रेरितिक प्रशासक वेनेजुएला के कार्डिनल बल्थाजार को 6 जनवरी को उनके नाम दिवस की याद करते हुए एक ताज संदेश भेजा। अपने पत्र में संत पापा ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया है।
जो हाल के वर्षों में एवं खासकर इन दिनों कोविड-19 महामारी के कारण भारी मानवीय एवं सामाजिक आर्थिक संकट के शिकार हुए हैं। संत पापा ने कार्डिनल को लिखा, ईश्वर आपको बल एवं साहस प्रदान करे ताकि आप एक पिता के हृदय के साथ उनके विश्वासी प्रजा को साथ एवं सांत्वना दे सकें जो महामारी की विपत्ति सत्ताधारियों की उद्दंडता एवं शक्तिहीन कर देने वाली बढ़ती गरीबी से पीड़ित एवं परेशान हैं। कार्डिनल का नाम बल्थाजार है जो 3 ज्योतिषियों में से एक का नाम है जिसको पूर्व का ज्ञानी व्यक्ति भी कहा जाता है। मेल्कियोर एवं गास्पर के साथ बल्थाजार ने यीशु के जन्म के बाद उनका दर्शन किया था और उन्हें सोना, लोबान एवं गंधरस की भेंट की थी।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 9 जनवरी को वाटिकन में उरुग्वाई के राजदूत श्री गुजमैन मिगवेल का अभिवादन कर उनका प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। श्री गुजमैन मिगवेल का जन्म 20 अप्रैल 1944 को मोंटेवीडियो में हुआ था। वे शादीशुदा हैं और उनके 4 बेटे हैं। उन्होंने 1970 में मोंटेवीडियो में रिपब्लिक यूनिवर्सिटी से लॉ और सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट किया। उन्होंने अनेक पदों में अपनी सेवा दी। उरुग्वाई में कलीसिया के राष्ट्रीय संचार सोसाइटी के निदेशक, लोक धर्मियों के लिए गठित काउंसिल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ, लोक धर्मियों के लिए गठित काउंसिल में अध्ययन सहायक, लोक धर्मियों के लिए गठित पोंटिफिकल काउंसिल कार्यालय के प्रमुख, लोक धर्मियों के लिए गठित पोंटिफिकल काउंसिल के काउंसिल में उप सचिव, लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल कमीशन के सचिव और 2014 से वे लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल आयोग के उपाध्यक्ष के प्रभारी सचिव हैं। वे रोमन कोरिया के इस विभाग में इस बड़े ओहदे पर सेवा करने वाले पहले लोक धर्मी हैं। वे निश्चित रूप से रोमन कोरिया के सबसे परिचित चेहरों में से एक हैं। जब वे वाटिकन पहुंचे तो उस समय संत पापा पॉल छठे थे। उरुग्वाई न्यायविद श्री गुजमैन को पिछले जुलाई में वाटिकन में अपने देश का राजदूत नियुक्त किया गया था। आज शनिवार 9 जनवरी को सुबह उन्होंने संत पापा फ्रांसिस को अपना प्रत्यय पत्र सौंपकर आधिकारिक तौर पर अपने राजनयिक मिशन की शुरुआत की। उन्होंने फिर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन के साथ भी मुलाकात की। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस के तेजी से फैलते नए वेरिएंट के बारे में चिंता व्यक्त की है और यूरोपीय देशों से नए कोविड-19 संस्करण पर अंकुश लगाने का आग्रह किया है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी में यूरोपीय क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर हैंस क्लूगे ने गुरुवार को कोपेनहेगन में एक वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, हम 2021 में एक चुनौतीपूर्ण शुरुआत के लिए तैयार थे और यह ऐसा ही रहा है। इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में नए औजार अब उपलब्ध हैं, जिनमें अनेक टीके भी शामिल हैं। इनके अलावा वायरस से संबंधित जानकारी में भी इजाफा हुआ है, लेकिन दुनिया अब भी कोविड-19 महामारी की चपेट में है। हाल के दिनों में कोविड-19 का एक नया प्रकार सामने आया है जो पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। वायरस के इस नए रूप या प्रकार के मामले अब तक क्षेत्र के 22 देशों में दर्ज किए जा चुके हैं। यूएन अधिकारी का मानना है कि वायरस का यह नया प्रकार चिंता का विषय है क्योंकि इसके फैलाव की दर ज्यादा है। हालांकि इसकी गंभीरता के बारे में अभी कुछ पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निदेशक क्लूज ने कहा, हमारा आकलन है कि वायरस का यह प्रकार समय बीतने के साथ अन्य रूपों का स्थान ले सकता है, जैसा कि ब्रिटेन में देखा गया और अब डेनमार्क में हो रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।